कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीदासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब एक ऐसे उत्सव में भाग ले रहे हैं जहां श्री कृष्ण का आविर्भाव मनाया जा रहा है, वो भी आज के विशेष दिवस पर जन्माष्टमी। वैसे तो हर वर्ष मनाते हैं हम लोग, इस वर्ष कुछ विशेष है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इस वर्ष में विशेषता ये है कि जो स्थितियां नक्षत्रों की, ग्रहों की आज से 5000 वर्ष पूर्व थीं, वही आज भी हैं। भक्तों के लिए वैसे तो हर दिन शुभ होता है क्योंकि हर दिन कथा का दिन है, लेकिन जब भगवान का आविर्भाव हो तो हृदय में आनंद बढ़ जाता है। भागवत में वर्णन है, जब श्री कृष्ण का आविर्भाव होने वाला था तो ब्राह्मणों के घरों में अग्नियां स्वतः जलने लगी थी। वो अग्नि यज्ञ की जो कंस के अत्याचार से बंद हो गई थी, कंस ने बंद करा दिए थे सारे यज्ञ, लेकिन केवल श्री कृष्ण के प्राकट्य से स्वतः वो अग्नियां, यज्ञ की अग्नियां प्रज्वलित हुई। भक्तों के हृदय में आनंद हुआ और साथ ही साथ कंस जैसे असुर के हृदय में भय उत्पन्न हुआ। तो जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म की कथा हम लोग कई बार सुन चुके हैं, तो जन्माष्टमी का उद्देश्य क्या है उसको जानना चाहिए, कैसे उत्सव मनाना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि अन्य अवतार हैं, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण ये स्वयं भगवान हैं और वो स्वयं आते हैं। थोड़ा बहुत इसको समझना चाहिए, कृष्ण कैसे स्वयं आते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। तो तत्वतः कृष्ण के जन्म को कैसे जान सकते हैं, एक बड़ा साधारण सा प्रश्न है, आप लोग विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। हम कहते हैं कि, अर्थात आचार्य समझाते हैं कि स्वयं कृष्ण आते हैं गोलोक से और बाकी जो है वो उनके अवतार हैं, उनकी कलाएं हैं, उनके अंश हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो क्या जब भगवान आते हैं तो गोलोक खाली हो जाता है? भगवान अपने घर में ताला लगा कर आते हैं, जैसे आप लोग आए हैं, आशा है आप सब ताला लगा कर आए हैं ना घर में, अब रात तक वापस नहीं जाना है। तो क्या गोलोक खाली हो जाता है? यशोदा मैया, नंद महाराज वो सब आ जाते हैं तो गोलोक में कौन रहता है? और अगर कृष्ण ताला लगा के नहीं आते तो फिर जो आते हैं वो तो उनके विस्तार हैं, वो तो स्वयं कृष्ण नहीं है, सही है ना? अगर कृष्ण आ जाते हैं स्वयं तो वहां खाली हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्वयं कृष्ण कैसे आते? फिर मतलब जो कृष्ण आते वो भी विस्तार ही हैं, वो भी उनके कोई अंश हैं, क्योंकि कृष्ण तो गोलोक में है, सही है कि गलत? आप लोग सब सुन रहे हैं, अच्छा अभी आप लोग ऐसे हाथ उठाइएगा जो कहेंगे कि कृष्ण स्वयं आते हैं और वो लोग खाली हो जाता है, हाथ उठाइए कितने लोग ऐसा कहते हैं। कमलोचन को परीक्षा ले रहे हैं हमारे। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि कृष्ण आते हैं, कृष्ण स्वयं नहीं आते, उनका विस्तार आता है कृष्ण वहीं पर रहते हैं, बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं? इन दोनों में किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो कुछ तो उत्तर होगा। आचार्यों ने इसको समझाया है कि दोनों सही है। दोनों सही है का अर्थ कृष्ण आते हैं वो भी सही है, स्वयं आते हैं, और गोलोक खाली नहीं होता वो भी सही है, गोलोक में ताला नहीं लगता। तो ऐसे कैसे होता है? यही कृष्ण है, वही भगवान है। और उनको समझाने के लिए आचार्यों ने समझाया कि भगवान अपना विस्तार दो प्रमुख रूपों में करते हैं, एक प्रकाश विग्रह और एक विलास विग्रह। प्रकाश अर्थात भगवान के वो विस्तार जो भगवान के समान ही है, कोई अंतर नहीं, न कार्यों में न रूप में कोई अंतर नहीं, थोड़ा बहुत कार्य में अंतर होता है। उदाहरण के लिए जब भगवान रासलीला करते हैं तो भगवान ने अपना विस्तार हजारों हजारों रूपों में किया, जितनी गोपियां थी उनमें किया, तो वो सारे कृष्ण ही थे, कोई अंतर नहीं था। तो अंतर क्या था? कार्य का, रूप का कोई अंतर नहीं। इसी तरह और विलास क्या है? विलास वो है कि जहां पर रूप का अंतर होता है, जैसे बलराम इत्यादि। बलराम जी भी भगवान है, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बलराम जी के विषय में कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया रूप कृष्ण लीला रसहाय। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि बलराम जी भी वही भगवान है, कृष्ण सर्व अवतारी कृष्ण है, सर्व अवतार उनसे आते हैं, और उनका ही दूसरा रूप है श्री बलराम। इसको विलास विग्रह कहते हैं। अर्थात भगवान एक ऐसा विस्तार करते हैं जो जिनमें कोई अंतर नहीं है, वही भगवान है। द्वारका में जब रहते थे अपनी रानियों के साथ, वही भगवान। लेकिन नारद मुनि ने देखा कि हर जगह अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपना विस्तार में रूप को बदल लेते हैं तो फिर वराह, नरसिंह, नारायण, व्यूह इत्यादि रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि वही भगवान आए हैं तो वो सत्य है, वही कृष्ण आते हैं जन्माष्टमी के दिन, वही कृष्ण प्रकट होते हैं अपने पूर्ण अंशों के द्वारा। और ये क्या है, कृष्ण की लीला कैसे है, इसको बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्म वैवर्त पुराण में समझाया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान के आने के पहले का वर्णन किया गया है, गोलोक में क्या हो रहा है। भगवान तो प्रकट होने वाले हैं, भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं इस पृथ्वी पर जाऊंगा, वैसे बहुत सी पृथ्वियों पर जाते हैं भगवान। भगवान का आविर्भाव और भगवान के चले जाना, भगवान का अप्रकट होना, ये सूर्य के समान है। जैसे यहां पर हम सूर्य देख रहे हैं लेकिन किसी और देश में इस समय सूर्य नहीं है, रात्रि है, तो वहां वो कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त नहीं हुआ। यहां पर अभी हम सूर्य देख रहे हैं, शाम को सूर्य अस्त हो जाएगा, हम लोग कहेंगे सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त नहीं होता, किसी और देश में सूर्य उदय होता। ऐसे ही भगवान की लीलाएं हैं, कभी समाप्त नहीं होती, प्रकट और अप्रकट होती हैं, नित्य और नैमित्तिक लीलाएं। नित्य लीलाएं वो हैं जो भगवान अपने धाम में करते हैं, नैमित्तिक लीलाएं जो इस धरती पर या अन्य धरतियों पर आकर करते हैं। तो प्रकट लीला में भगवान कभी कभी वृंदावन से द्वारका या मथुरा या मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, लेकिन अप्रकट लीला में नहीं जाते, जहां हैं वहीं रहते हैं, लीला करते हैं, और भक्त भक्ति से, भक्ति भाव से इन लीलाओं को देख पाते हैं। इसका प्रमाण रूप गोस्वामी ने दिखलाया। उन्होंने भक्ति भाव से कृष्ण की अप्रकट लीला में प्रवेश किया वृंदावन में रहते हुए। तो इसीलिए हम सब के लिए आज के दिवस पर यह आवश्यक है जानना कि कैसे हम भी कृष्ण को जान सकते हैं, कैसे हम भी कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम भी कृष्ण को देख सकते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, आपने कृष्ण को देखा है? अभी हम कुछ समय पहले वृंदावन में थे तो एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, प्रभु जी आपने कभी कृष्ण को देखा है? हमने कहा हम रोज देखते हैं। वो नहीं जो सामने खड़े हैं, क्योंकि लोग उनको भगवान मानते ही नहीं है, पत्थर मानते हैं। तो वो नहीं तो फिर कौन से? वो जो बात करते हैं, ये तो बात नहीं करते। लेकिन ऐसे कई भक्तों का अनुभव है कि राधा गिरिधारी जी भी बात करते हैं, ऐसे बहुत से भक्त हैं। आप में से भी कई भक्तों का अनुभव होगा, हम राधा गिरिधारी जी के सामने आकर बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करते, बस इस बार मेरी रक्षा कर लो, अगली बार गलती नहीं करूंगा। राधा गिरिधारी जी रक्षा कर देते हैं। हम लोग कुछ और आकर मांगते हैं, हमारा स्वभाव है मांगना, और कृष्ण का स्वभाव है देना। कृष्ण देते हैं इसीलिए हम मांगते हैं। वैसे हमें क्या मांगना चाहिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस पर आप सब ने कुछ ना कुछ मांगा होगा, जन्माष्टमी तो दिवस ही ऐसा है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि जन्माष्टमी पर ही लोग ज्यादा क्यों आते मंदिर में? मंदिर तो रोज खुला है, गिरिधारी जी खड़े हैं, जगन्नाथ जी हैं, तो जन्माष्टमी के दिन ही क्यों आते हैं? क्योंकि हृदय में एक इच्छा होती है कि आज के दिन जो भगवान से मांगेंगे वो मिल जाएगा, इसीलिए सब आते हैं। भक्तों को भगवान से एक ही चीज मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए भक्तों को? मांगना चाहिए भगवान से कि जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो आप मत सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना मेरी। सही है? क्योंकि अगर मेरी आपने सुन ली तो फिर मैं तो यहीं रहूंगा, कभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप कीजिए, जो मैं मांग रहा हूं वो मत दीजिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं दूषित हैं, भगवान को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सब जानते हैं, हृदय में परमात्मा है। और विग्रह क्या है? आज हम गिरधारी जी के सामने उनका गुणगान कर रहे हैं। क्या है विग्रह? क्या कोई पत्थर है? क्या कोई लकड़ी है, धातु है? नहीं, भगवान के विस्तारों का सार है ये विग्रह रूप। भगवान अपना विस्तार, एक भगवान का विस्तार होता है जिसे परह रूप कहते हैं, वो रहते हैं भगवान धाम में। एक विस्तार होता है जिसे व्यू कहते हैं, उनको भी हम देख नहीं सकते। एक परमात्मा है जो हृदय में है, हम नहीं देख सकते। लेकिन इन सब का, इन सब की शक्ति भगवान एक रूप में अर्पित करते हैं, और वो है विग्रह। तो भले हम लोग भगवान के दर्शन गोलोक में नहीं कर सकते, लेकिन वही भगवान प्रकट होते हैं भौतिक तत्वों में। और ऐसे भगवान को जानना केवल भक्ति से संभव है। तो ऐसा क्या है हमारे हृदय में कि हम लोग भक्ति नहीं कर पाते, कृष्ण को नहीं जान पाते, कृष्ण के प्रति वो प्रेम नहीं बढ़ता? हमने सुना है शास्त्रों में, हमने सुना है चैतन्य चरितमृत कथाओं में, कृष्ण ने बात की एक ब्राह्मण से, एक सरल ब्राह्मण से, और उसकी इच्छा क्या थी? शादी करना चाहता था। एक बूढ़े ब्राह्मण ने वचन दिया, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, वापस गया, वचन को पूरा नहीं किया। ब्राह्मण आया भगवान के पास, आपके सामने वचन दिया था, आपको साक्षी देनी है। भगवान बोले, भगवान चले। हम लोग कई कई दिनों से, कई सालों से उन्हीं भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन कृष्ण तो नहीं बोलते हैं। इसका कारण है हमारे हृदयों में सरलता नहीं है, हम सरल नहीं, हम नम्र नहीं। अभी भी वो क्रोध, वो मोह, वो माया, वो लोभ भरा हुआ है और प्रार्थना नहीं करते तीर्थ का। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एक भजन हम सुन रहे थे, गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन में निज नाम की माला जपने दे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। जब माला जप नहीं होता है, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। गर्व भरा हुआ मस्तक है, झुकता नहीं है। तो हमारे हृदय में ये इनको दूर करना, अज्ञान को दूर करना, ये जन्माष्टमी का उत्सव का उद्देश्य है। हम लोग क्रोध में आ जाते हैं। आचार्य समझाते हैं क्रोध को करुणा से मारा जा सकता है। द्वेष करते हैं, द्वेष को सराहना से समाप्त किया जाता है और अज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान से। और ऐसा ज्ञान जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, वही असली ज्ञान है जो कृष्ण भक्ति में हमें लगाए। और भक्ति क्या है? अलग अलग आचार्यों ने भक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी। व्यासदेव कहते हैं पूजा आदिश्व, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि यही भक्ति है। गर्ग मुनि कहते हैं कथादिश्व, भगवान की कथाओं में रुचि, पूजा दीश्व अनुराग, पूजा इत्यादि में भगवान की रति उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होना। गर्ग मुनि कहते हैं कथादीश्व, भगवान की कथाओं में वो रुचि उत्पन्न होना। जैसे आज के दिवस पर यहां इतनी अच्छी व्यवस्था की है, दिन भर कथाएं हैं, दिन भर कृष्ण का नाम सुनना है, उसमें रुचि उत्पन्न होना। परीक्षित महाराज को इतनी रुचि थी कृष्ण कथा में कि उन्हें भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। हम लोग तो आज सुबह से सोच रहे हैं कि रात के 12 कब बजेंगे, कब हम लोग उपवास तोड़ सकेंगे। परीक्षित महाराज को पता ही नहीं चला। नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति क्या है? वो कहते हैं कि तद अखिल अर्पित, जितना भी कुछ है सब कुछ उनको अर्पित करना, और जब वो दिखाई ना दे, जब वो उनका स्मरण ना हो, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अगर भगवान का विस्मरण हो जाए एक क्षण के लिए भी तो व्याकुल हो उठू, ये भक्ति है। और ऐसी भक्ति के स्तर तक पहुंचने के प्रयास हम सबको करना चाहिए। भगवान ने अपनी लीलाओं से बहुत सुंदर संदेश हमें दिए हैं। आज जन्माष्टमी का अवसर है, तो उनकी एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन करेंगे और उससे कैसे हमें संदेश मिलता है कि हम भक्ति कर सकें, हम जान सकें भगवान को। ऐसा क्या है जो बाधा है हमारे और कृष्ण के बीच? कृष्ण वैसे बड़े कृपा करते हैं, दया करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक न्याय और एक कृपा। अगर भगवान न्याय करें तो हम में से कोई यहां बैठकर उनकी कथा नहीं सुन सकता, किसी को अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार न्याय ऐसा होना चाहिए कि हम लोग हजारों लाखों सालों तक नरक में पड़े रहें। लेकिन उस न्याय से ऊपर होता है प्रेम या कृपा भगवान की, कि वो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी को भेजते हैं, जाओ ये सब इनके साथ न्याय नहीं करना। कभी कभी लोग भगवान से ये कहते हैं या भक्तों से कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। उसको कहना चाहिए बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ कि भगवान ने न्याय नहीं किया, अगर न्याय कर देते तो तुम सहन नहीं कर पाते। ये तो कृपा है भगवान की कि थोड़े में ही छोड़ दिया तुम्हें। श्री प्रभुपाद जी ने एक बार एक भक्त को समझाया। प्रभुपाद के भक्त भगवान के लिए भोग बना रहे थे, सब्जी काट रहे थे, काटते काटते उनकी उंगली कट गई। तो उन्होंने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि मैं तो भगवान के लिए कर रहा था, भोग बना रहा था, मेरी उंगली कैसे कट गई। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे कर्मों के अनुसार तो तुम्हारा सर कटना चाहिए था, ये भगवान की कृपा है कि तुम्हारी केवल उंगली कटी है। तो इसीलिए न्याय और न्याय से परे है प्रेम, भगवान प्रेम करते हैं, इसीलिए ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम सब उनकी ओर जा सकें। एक आचार्य ने भगवान को चोर कहा है, वैसे तो बहुत लोगों ने चोर कहा है, भगवान है ही चोर, लेकिन क्या क्या चुराते हैं भगवान, केवल माखन नहीं चुराते और भी बहुत कुछ चुरा लेते हैं। तो इस भजन में हम लोग देखेंगे कि भगवान क्या क्या चुराते हैं। ये बहुत सुंदर भजन है, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम। चौराग्रगण्य मतलब चोरों में अग्रणी, सबसे बड़ा चोर, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो छोटी मोटी चीज नहीं करते हैं, है ना। भगवान जब नशे में आते हैं तो भी सबसे बड़े शराबी लगते हैं। आपने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखा होगा, जब जगन्नाथ जी मंदिर से निकलते हैं जगन्नाथपुरी में, तो ऐसा लगता है मानो झूमते हुए आ रहे हैं, उनसे बड़ा शराबी कोई और दिखाई नहीं देता। हाँ, वो अपने भक्तों के प्रेम में झूमते हैं, ये बेकार की शराब में नहीं झूमते। तो ऐसे ही जब वो चोरी करते हैं तो चौराग्रगण्य सबसे बड़े चोर कहलाते हैं। और क्या क्या वो चोरी करते हैं ये इस भजन में हम लोग देखेंगे। भजन आपको यहाँ पर ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं, सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप पढ़ते हुए इस भजन को दोहराइए, प्रयास करेंगे इस भजन को थोड़ा सा समझाने का, ताकि हम लोग आज के दिवस पर कृष्ण से सही प्रार्थना कर सकें। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां च दुकूल चौरं ब्रजे प्रसिद्धं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकूल चौरं ब्रजे प्रसिद्धं। तो हम लोग फिर से गाएंगे थोड़ा, मृदंग भगवान की सेवा में नहीं हो रहा था।
ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकूल चौरं ब्रजे अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चोरं क्षीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदशामलकान्ति चौरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकूल चौरं।
भगवान की चोरी का वर्णन है। क्या चुराते हैं भगवान? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। सारे ब्रज में ये प्रसिद्ध हैं ऐसे चोर जो माखन चुराते हैं। और प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि पकड़े नहीं जाते। कभी कभी गोपियां पकड़ लेती हैं। एक बार एक गोपी ने हाथ पकड़ लिया, आज ले चलूंगी यशोदा के पास। यशोदा को विश्वास नहीं होता है कि मेरा कृष्ण चोरी कर सकता है, आज दिखाऊंगी। कृष्ण ने प्रार्थना की, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, हाथ पकड़ कर ले गई, यशोदा के सामने गई और यशोदा से कहा कि देखो, तुम्हारा लाल चोरी करते हुए पकड़ा है मैंने। यशोदा ने देखा और कहा कि मैं जानती हूं कि तुम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन अपने ही लड़के को कृष्ण मानती हो, ये पहली बार सुना है। गोपी ने देखा तो जिसका हाथ पकड़ा था वो उसका ही लड़का था। घबरा गई, बाहर निकली, हाथ पकड़े हुए थी। जब फिर देखा तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और कृष्ण ने कहा, अगर अगली बार पकड़ा तो अभी तो तुम्हारा पुत्र बना हूं, अगली बार तुम्हारा पति बन जाऊंगा। गोपांगनाना सदकूल चोरम। गोपियों के वस्त्रों का हरण करते हैं भगवान, उनकी तपस्या, उनकी प्रार्थनाएं और जो पूजा इत्यादि वो करती हैं उसका फल प्रदान करने। इन दो चीजों के विषय में हम सुन चुके हैं, अब आइए सुनते हैं और क्या क्या वो चोरी करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हम सब ने अनेक जन्मों से एक धन अर्जित किया है, पाप का धन। और कृष्ण अनेक अनेक जन्मों से अर्जित हम सब के पापों को चौराग्रगण्यम चुरा लेते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कभी कभी भगवान किसी की आवाज भी चुरा लेते। हरे हरे तो भगवान दिखा रहे हैं कि केवल पाप नहीं चुराता हूं, पापियों की आवाज भी चुरा लेता हूं।
एक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक जन्मार्जित पाप चोरम
श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। वैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके स्तर को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन राधा रानी प्रसन्न होती हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। हमारी छोटी सी सेवा राधा रानी को प्रसन्न करती है और वो कृष्ण से कहती हैं जाकर कि जीव है बहुत सेवा करता है आपकी, प्रेम है आपसे, आपकी शरण में ले लीजिए। और जब राधा रानी ये कहती हैं तो कृष्ण मना नहीं कर पाते। इसीलिए हम सब जब महामंत्र कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो पहले हरा संबोधन श्रीमती राधा रानी, प्रार्थना है उनसे श्री कृष्ण की सेवा में हमें लगा ली। श्री राधिकाया हृदय से चौरम नमामि श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया पाराश्रितानां च समस्त चौरम सौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां। इन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है, पादाश्रितानां, उनका सब कुछ चुरा लेंगे, समस्त चौरम, उनके भौतिक इच्छाओं को चुरा लेंगे, उनके हृदय में बसे हुए काम क्रोध मोह मद मत्सर्य को चुरा लेते हैं, उनके भौतिक ऐश्वर्यों को चुरा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद छोटा सा व्यापार करते थे, एक उनको संदेश मिला आपका सब कुछ चोरी हो गया, आपके ही स्थान पर कार्य करने वाले ने सारा रुपया चोरी कर लिया। और उस समय प्रभुपाद ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि अब पूर्ण आश्रय का समय। इसलिए जो आश्रय लेते हैं भगवान के चरण कमलों का, समस्त चौरा भगवान के सभी बाधाओं को जो कृष्ण भक्ति में हैं चुरा लेते हैं। अचिंचनीकृत पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पशिगेहहीनम्। Thank you.
ज्ञात्यो भीषण चोरहित्रे दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेति यदीयनामापि हरत्यशेषम् प्रसारानपि पापराशी आश्चर्यरूपो ननु चोरहिद्र हृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्य मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणां च हस्वा मम सर्वमेव धनम् पालायसे कोत्र धृतोद्धचोरम् त्वं भक्ति दाम्ना मया निरुद्धिन्नति घोरं यमुपाश्य बन्धं भिन्नति भीमं भवपाश्य बन्धं सर्वस्य समस्त बन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं नैवात्मनो भक्त मन्मानसे तां सरसि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मन्मानसे लभस्वहे चोरहरे चिराय चौर्यदोषो चितमेव दण्डं लभ कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेति सर्वत्वचौरहृदयान् हि मोचयामि भजन को अच्छे से संतान और समय की कमी के कारण केवल गाना ही पड़ा है। ब्रजे प्रतिष्ठम नवनीत चौरम गोपांगनानां चजुकूल चौरम ब्रजे प्रतिष्ठम अनेक
एक जन्माजित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अहे भजन में बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार भगवान क्या क्या चुरा लेते हैं, सब कुछ पादाश्रितानां समस्त चौरं। लेकिन फिर भी हमारे हृदयों में अभी तक बहुत कुछ भरा हुआ है। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला से ये हमें समझाया कि हम क्यों भगवान के पास नहीं जा पाते, और वो लीला है शकटासुर की लीला। थोड़ा सा वर्णन करना चाहेंगे आज के दिवस पर। भगवान 3 महीने के थे, छोटे से बालक, अभी चलना शुरू नहीं किया था। एक उत्सव मनाया गया, भगवान ने एक तरफ से दूसरे तरफ हुए, भगवान के लिए उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंत्रों का उच्चारण हुआ। बहुत व्यस्त थी यशोदा, तो यशोदा ने एक छकड़े के नीचे, छकड़ा जानते हैं आप लोग, बैलगाड़ी के आगे उसके नीचे रख दिया। देखिए किसको रख दिया, कृष्ण को। कृष्ण को ब्रज में कोई भगवान नहीं मानता, कभी कभी कृष्ण को दुख भी होता है, अरे लोग मुझे भगवान नहीं मानते, सारा जगत भगवान मान रहा है, आदर सम्मान करता है, और यहाँ ब्रज के लोग छकड़े के नीचे रख दिया, और कोई जगह नहीं मिली कृष्ण को रखने के लिए। ब्रज में ग्वाल बाल भी हैं, वो भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कभी कभी कृष्ण बताना चाहते हैं मैं भगवान हूं। एक बार कृष्ण ने बोला आज इनको सबको बताऊंगा मैं भगवान हूं, सारे ग्वाल बालों को बुलाया, जानते हो मैं कौन हूं? तो सब लोगों ने ऐसे हाथ रखा, बताओ कौन है भाई, हमें नहीं पता, मैं भगवान हूं। अच्छा कैसे मान लें? अरे छोटा सा था कुछ दिनों का, पूतना को मारा था मैंने, मारा था या नहीं? तो मधुमंगल जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण का क्या हुआ? अरे वो तो ब्राह्मण बैठे हुए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उनके मंत्रों की शक्ति से पूतना मारी गई, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? फिर भगवान और भी बात, बहुत सी लीलाओं को बताने, गोवर्धन उठाया था कि नहीं आज सुबह हम लोग सुन रहे थे, भगवान का गोवर्धन उठाया था कि नहीं? अरे वो तो हम सब ने डंडियां लगा रखी थी इसलिए बच गए, नहीं तो तुम भी जाते और सारे ब्रजवासी। तो मानते ही नहीं है, छकड़े के नीचे रख दिया और कोई जगह नहीं। एक बड़ा सुंदर भजन है जिसमें ये बताया गया कि जब यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा तो कैसे बांधा। यशोदया गाधम उलूखलेना, यशोदा ने उलूख उखल से बांध दिया कृष्ण को, तो किससे बांधा? गोकंठ पाशे ननी बध्यमानम, गायों को बांधने वाली रस्सी से बांध दिया कृष्ण को। बताइए बेचारे कहां से अपना गोलोक छोड़कर, वैकुंठ छोड़कर आए हैं, ऐश्वर्य छोड़कर, जहां सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, और यहां गाय को बांधने वाली रस्सी। तो खैर शकट के नीचे, एक लकड़ी के नीचे रखा। वैसे वो जो रूप था एक असुर का था, ऐसा बताया गया है कि अपने पूर्व जन्म में यह शकटासुर हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष का नाम सुना आप सबने? असुरों का नाम सबने सुना होता है, भक्तों के नाम पर तो शायद याद नहीं आया, लेकिन हिरण्यकश्यपु हाँ सबने सुना, हिरण्याक्ष सब जानते हैं। तो हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, अपने पूर्व जन्म में, और बहुत शक्ति थी, तो बहुत उत्पात मचाया करता था। विशेषतः एक ऋषि थे लोमश ऋषि, आज भी हैं। आप जानते लोमश ऋषि की उम्र कितनी है? ऐसे बताया जाता है कि वो अपने जीवन में कई ब्रह्मा जी को आते और जाते हुए देख लेते हैं लोमश ऋषि। वैसे हम सबकी आयु 100 वर्ष की होती है, थोड़ा सा ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन करते हैं। हम सबकी आयु 100 वर्ष की होती है, बहुत लंबी लगती है हमें, बूढ़े हो जाते हैं, दिखाई नहीं देता, आंखों से चला नहीं जाता, फिर हम लोग भगवान की भक्ति में लगने आते हैं, बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? करोड़ों करोड़ों साल। और ऐसे कई ब्रह्मा उनके जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, लोम श्रिषि, तो उनको बहुत कष्ट दिया करते थे, उनके यज्ञ स्थली को पवित्र कर देते। और एक दिन उन्होंने बहुत उत्पात किया तो लोमश ऋषि ने एक श्राप दे दिया, तुम्हें जो शरीर मिला है ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो, इसीलिए तुम आज से मृदेह हो जाओ। मृदेह अर्थात तुम्हारा शरीर नहीं रहे, भौतिक बाहर का स्थूल शरीर नहीं रहे। वैसे इसके द्वारा हम लोगों को भी शिक्षा मिलती है कि हमें जो शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए मिला है, और अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं तो मृदेह हो जाना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो चलते फिरते भूत प्रेत हैं बस। वैसे एक बहुत सुंदर बात पद्म पुराण में भी कही गई है, आप सबने सुनी होगी लेकिन इस वक्त दोहराना चाहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, विष्णु भक्त सुर प्रोक्ता असुर तद विप्रया। सुर कौन है और असुर कौन है? विष्णु भक्त जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति, वो सारे सुर हैं, देवता हैं, अच्छे लोग हैं। और जो भी उनके विरुद्ध या विपरीत हैं, फिर वो जो कोई भी हो, चाहे किसी की भी तथाकथित भक्ति करते हो, असुरहा, ऐसे पद्म पुराण कहता है। तो इसलिए देह मिला है, शरीर मिला है, तो भगवान की भक्ति के लिए केवल एक ही उद्देश्य। और अगर इसमें भक्ति नहीं की, इस शरीर से भक्ति नहीं की, उद्देश्य पूरा नहीं किया, तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जब हम लोग मां के गर्भ में थे तो हम सब ने वचन दिया भगवान को, बहुत सुंदर भजन उन्होंने लिखा है, उसमें कहते हैं कि जब मां के गर्भ में थे तो आपका दर्शन हुआ, भगवान दर्शन देते हैं बालक को गर्भ में, तो आपका दर्शन हुआ, मैंने आपको वचन दिया कि बस एक बार ये कष्टों से मुझे बाहर निकालिए, फिर कभी किसी मां का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा, एक बार बस। लेकिन जब जन्म हुआ, आदरे रचेले स्वजने रकोले, अपने प्रियजनों ने बहुत प्रेम दिया, भूल गए कृष्ण को। धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई की, धन कमाया, कृष्ण को भूल गए। तो इसलिए हम लोग झूठे हो गए हैं सब। बलि महाराज कहते हैं कि पृथ्वी सारे भारों को सहन कर सकती है, केवल एक झूठे व्यक्ति के भार को सहन नहीं कर सकती। इसलिए अगर हमें भगवान को अपने दिए हुए वचन को पूरा करना है तो पूर्णता से, हृदय से उनकी भक्ति में लगना चाहिए। तो उत्कच को ये श्राप मिला, और फिर जैसे ही उसको श्राप मिला उसका देह चला गया तो बड़ा बड़ा दुखी हुआ, उसको साक्षात्कार हुआ। कभी कभी दुख से साक्षात्कार होता है। भागवत में वर्णन है 11वें स्कंद में, एक बड़ा अमीर व्यक्ति था, बहुत पैसा, लेकिन बहुत कंजूस, देता नहीं था किसी को। ऐसे कंजूसों से मिले होंगे आप लोग कई बार, बहुत पैसा होता है, कृपण कहते हैं उस व्यक्ति को, सुविधा है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह जो व्यक्ति मनुष्य शरीर होकर भक्ति नहीं करता वो कृपण कहलाता है, कंजूस। भगवान ने सुविधा दी है आपको, समय दिया है, बुद्धि दी है भगवान की भक्ति करने के लिए, तो ऐसे कृपण नहीं बनना चाहिए, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर उत्कच से कहा कि तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तो उत्कच को बहुत दुख हुआ, उसने प्रार्थना की, लोम श्रिषि से क्षमा कीजिए, शरण लेता हूं आपकी, आप कुछ उपाय कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अगले मनवंतर में, ये पिछले मनवंतर की कथा है, तो भगवान स्वयं आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही उत्कच फिर अब शक्तासुर के रूप में आया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका मृदेह रूप था, भूत के रूप में था, कोई कहते हैं शकट के रूप में था, कोई कहते हैं हवा के रूप में था, किसी भी रूप में था, लेकिन वो वहां था और भगवान खेल रहे थे, भगवान मारना चाहते थे। इस प्रसंग की व्याख्या आचार्यों ने बहुत सुंदर की है कि देखिए कृष्ण कौन है, कैसे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, छोटे से बालक हैं 3 महीने के, और जैसे बालक हवा में अपने पांव चलाते हैं, कृष्ण भी पांव चला रहे हैं और धीरे से, बहुत जोर से नहीं, धीरे से कृष्ण के पांव का स्पर्श हो गया छकट को, उस छकड़े को, और उसमें बहुत कुछ भरा हुआ था, धड़ाम करके वो टूट पड़ा, गिर पड़ा। तो आचार्य कहते देखिए, जब भगवान के अलग अलग अवतार आए, वामन देव आए, तो वामन देव को ये साबित करने के लिए कि वो भगवान है बहुत विशाल रूप लेना पड़ा। नरसिंह देव आए, कितने विशाल रूप में उनको हिरण्यकश्यपु को फाड़ना पड़ा, मारना पड़ा, बहुत युद्ध हुआ। और भी अन्य अवतार हर कोई ना कोई हथियार लेकर आए। यहां कृष्ण है, केवल हवा में पांव हिलाए, असुर समाप्त। तो शक्तासुर को तो मारा, लेकिन आचार्यों ने समझाया कि इससे हम लोग क्या सीखते हैं। आचार्य समझाते हैं कि शक्तासुर, विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर ने इस विषय में, असुरों के विषय में लिखा है, और वो कहते हैं कि शक्तासुर ऐसे भार का प्रतीक है जो हम लोग अपने ऊपर लेकर चलते हैं, और जो जिस भार के द्वारा कृष्ण भक्ति नहीं कर पाते। 3 तरह के लोगों का वर्णन हम कर सकते हैं। एक कृष्ण, जिन्हें भावग्राही कहा जाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभौतो समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। शास्त्रों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से मूर्ख हो, जो मूर्ख है वो विष्णाय कहता है। जब हम लोग कृष्ण के नाम लेते हैं तो जैसे आहुतियां दी जाती हैं, तो ओम कृष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, जो भी, लेकिन विष्णाय नमः नहीं कहा जाता। आपने सुना है कभी? तो वहां कहा गया मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख व्यक्ति होता है वो विष्णाय कहता है। धीरो वदति विष्णवे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विष्णवे कहता है, क्योंकि विष्णवे कहा जाता है, ओम विष्णवे नमः। लेकिन उभौ तो समम पुण्य, दोनों को समान पुण्य मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन, कृष्ण भाव को ग्रहण कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने उच्चारण ठीक किया या नहीं किया। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें उच्चारण ठीक नहीं करना चाहिए, जब करते समय हरे कृष्ण राम 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 राम, ऐसा नहीं, स्पष्ट होना चाहिए कि कृष्ण भाव ग्रहण करते हैं। तो एक है भावग्राही, दूसरे हैं सारग्राही। सारग्राही क्या होते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, जो केवल सार को ग्रहण करते हैं। जैसे एक हंस होता है, आप जानते हैं हंस की योग्यता क्या है, विशेषता क्या है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है। आज कलयुग में शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि न दूध है, केवल पानी ही पानी होता है, तो वो कहां बेचारा ढूंढेगा दूध को उसमें। लेकिन फिर भी अगर दूध और पानी हो तो अलग करता है। वो कैसे करता है? भगवान ने उसको एक शक्ति दी है, उसकी जिह्वा पर एक ऐसा रसायन भगवान ने दिया है कि वो जब दूध और पानी का स्पर्श करता है, दूध मिले हुए पानी का, तो फिर वो जो दूध है वो सार के रूप में अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। जैसे हम लोग दूध में कुछ पदार्थ डालते हैं तो पनीर बन जाता है, फट जाता है, ऐसे उसकी जिह्वा पर भगवान ने स्वाभाविक तौर से दिया है, तो जैसे ही स्पर्श करता है वो फट जाता है और केवल सार बाहर आता है और वो उसको ग्रहण कर लेता है, तो उसको सारग्राही कहते हैं। तो सारग्राही कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। वो इस संसार में रहते हैं, इस संसार के ये जो सारा मायामय जगत है, मोह माया जंजाल, इसमें ही रहते हैं, लेकिन इसमें से केवल सार को ग्रहण करते हैं, सारग्राही। वो बाकी किसी चीजों को ग्रहण नहीं करते। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है? केवल इसी कारण के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें सारे ग्रंथों के सार को दिया है। तो वो दूसरे हैं सारग्राही, और तीसरे हम सब, और वो कौन है? भारवाही। हम लोग केवल भार ग्रहण करते हैं, हम लोग भावग्राही नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए। सार ग्राही नहीं है क्योंकि सार को लेते नहीं है, सार को छोड़ देते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है जो शाश्वत चीजों को त्याग देता है अशाश्वत चीजों के लिए। क्यों मूर्ख है? क्योंकि जो शाश्वत है सदा रहने वाली है उसको तो उसने त्याग दिया, और जो अशाश्वत है उसको पकड़ कर बैठा है जो थोड़े समय में चली जाने वाली है। कमल दल जल जीवन तलमल, हाथ में रेत के कण पकड़ के कितनी देर कोई रह सकता है? जीवन चला जाता है, हम सबका जीवन चला जाएगा। बहुत गंभीर होना चाहिए हम सबको। हमारा ज्ञान है कि हम कई कई साल तक जिएंगे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि किसी की कोई निश्चितता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने समझाया, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम इच्छन्ति किम् आश्चर्य तत्परम्। परम आश्चर्य है, रोज देख रहे हैं, आप सब भी रोज अखबार पढ़ते हैं। अचानक अखबार में क्या होता है, बस इतना ही, कहां कितने मरे। लेकिन शेष स्थावरम इच्छन्ति, हम लोग जो शेष हैं, जो अभी तक मरे नहीं हैं, स्थावरम इच्छन्ति, हमारी इच्छा क्या है? हमेशा बने रहें, मुझे कुछ नहीं हो। मेरे पिताजी के पिताजी चले गए, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी चले गए, मेरे पड़ोस वाला चला गया, इस तरफ वाला वो भी चला गया, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जीवन पल मर कभी भी जा सकते हैं, इसलिए जीवन की उपयोगिता है भगवान की सेवा करना। लेकिन हम लोग केवल भार को ग्रहण करते हैं, और किन चीजों के भार को हम लोग ग्रहण करते हैं? सबसे पहला तथाकथित कर्तव्यों के भार को, कुछ चीजों को अपना कर्तव्य मान लेते हैं, है नहीं उनको कर्तव्य मान लेते हैं, और उसके भार को उठाकर घूमते रहते हैं, जीवन निर्वाह करने के भार को उठाकर घूमते रहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परिपास्यते तेषां नित्यविद्युक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। भगवान कहते हैं मैं भार वहन करता हूं उन लोगों का जो मुझे समर्पण करते हैं। इसलिए जीवन में हमारे लिए यही अच्छा है कि हम भारवाही से सारग्राही बने, और अपने जितने भार हैं वो कृष्ण को दे दें, कृष्ण वहन करेंगे। अपने शुद्ध भक्तों का भार स्वयं कृष्ण वहन करते हैं। वहामी अहम्, भगवान कहते हैं मैं करता हूं। इसलिए इन सब भारों को दे देना चाहिए श्री कृष्ण को, और भार मुक्त होकर सार को ग्रहण करके हमें कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। जन्माष्टमी के उत्सव का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम आज के दिवस पर भगवान से ये प्रार्थना करें कि आज से पहले का जीवन जो भी रहा हो, आज हम लोग यहां आए हैं, हमें भगवान को कुछ देना चाहिए। भगवान के जन्म दिवस पर हम लोग आए हैं, जन्म दिवस तो नहीं, प्राकट्य आविर्भाव दिवस पर। भगवान का जन्म नहीं होता, अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन्न, भगवान अजन्मा है। फिर अजन्मा का जन्म कैसे मनाया जाता है? रात को 12 बजे प्रकट हुए, जन्माष्टमी है, अजन्मा का जन्म उत्सव है, यही विशेषता है जन्माष्टमी की। जो लोग मर्त्य लोक में हैं, जिनका जन्म होता है और जिनकी मृत्यु होती है, उनका जन्म मनाने का कोई लाभ नहीं है। लोग जन्म दिवस मनाते हैं, जैसे यहां पर सजाया गया, घरों को सजाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझा देते हैं, अंधकार कर देते हैं, किस लिए? केवल इसलिए कि बहुत अच्छा हुआ, एक वर्ष और मृत्यु के निकट आ गया, उत्सव मनाओ। वैसे जन्म दिवस मनाने का अधिकार केवल भक्तों को है, भक्तों को जन्म दिवस मनाना चाहिए। क्यों? एक वर्ष और मैंने कृष्ण की सेवा कर ली, मुझे इस शरीर में अवसर मिला कि मैंने एक वर्ष और कृष्ण की सेवा की, इसीलिए उत्सव है। तो इसलिए हमें ये आज प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जब हम आए हैं उत्सव मनाने भगवान का, तो कुछ भेंट लाते हैं। हम लोग किसी के उत्सव में जाते हैं तो भेंट देते हैं, तो हमें यहाँ आकर कृष्ण को एक भेंट देनी है। आप लोग सब लाए हैं कि नहीं भेंट कृष्ण के लिए? कि ऐसे ही आए हैं सब? कितने लोग लाए हाथ ऊपर कीजिए भेंट। अरे आप लोग भगवान के जन्म उत्सव में गए और कुछ भेंट नहीं, ये तो बहुत गलत है। आप जाते ना, मैंने हमने सुना वो आजकल वो बच्चों के मनाए जाते हैं बर्थडे, फिर उसमें गिफ्ट लेते हैं, फिर एक रिटर्न गिफ्ट भी होता है ना, होता है ना। तो अगर हम लोग गिफ्ट लेकर आए कृष्ण के लिए तो कृष्ण भी रिटर्न गिफ्ट देंगे ना हमें। तो आप सबको आज एक ही उपहार भगवान को देना है, सबसे अच्छा उपहार। सबसे अच्छा उपहार आप क्या दे सकते हैं भगवान को? आप तो वही दे पाएंगे ना भगवान को जो आपका है। तो ये धन, ये संपत्ति, ये किसकी है? हमारी है, भगवान की है। तो हम भगवान को दे सकते हैं, उनकी चीज उनको दे सकते हैं। लेकिन हमारी एक चीज है अभी, और वो है हमारे हृदय में बैठा हुआ हमारा अहंकार। वो हम भगवान को नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज के दिवस पर भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि इतने समय मैं आपकी सेवा कर नहीं पाया, लेकिन अब अवसर दीजिए, आज से मैं आपको समर्पण करता हूं, आज से मैं आपका। प्रभुपाद कहते हैं कि एक क्षण में शुद्ध भक्त बना जा सकता है, एक क्षण में। प्रभुपाद ने कहा इसके लिए केवल इतना करना है, भगवान के सामने आना, दंडवत प्रणाम करना और उनके सामने खड़े होकर कहना कि हे कृष्ण, आज तक मैं माया की सेवा कर रहा था, आज से आपकी सेवा करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं आप शुद्ध भक्त हो जाए। तो आज यही प्रार्थना आप सब कीजिए। अभी 12:30 बजे आरती होगी, 2-3 मिनट बाकी हैं। तो यही प्रार्थना कीजिए कि आज तक मैंने बहुत कुछ कर लिया, माया की सेवा कर ली, बहुत लोगों की सेवा कर ली, अपने कर्तव्य मानते हुए आपसे बहुत दूर रहा, लेकिन आज ये वरदान दीजिए कि आज के बाद अब केवल आपकी कथा में रुचि हो, आपकी सेवा में रुचि हो, आपके दर्शन, आपके कथा श्रवण, आपके कीर्तन, इसी में मेरा जीवन बीत जाए। एक बहुत सुंदर लीला हुई थी, दामोदर लीला, जिसके अंत में नल कुंवर और मणिग्रीव ने बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण की। ये भक्तों के लिए एक आदर्श है प्रार्थना, साधकों के लिए। उनकी प्रार्थना थी, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोने। वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हे कृष्ण मेरी वाणी आपके गुणगान में लगे, मेरे कर्ण, मेरे कान आपकी कथाओं में लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोने, और मेरे जो हाथ हैं वो केवल आपकी सेवा में लगे, आपके मंदिर को साफ करें, आपके लिए भोग बनाए, आपके लिए हार बनाए। हस्तौ च कर्मसु, और मन, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मनस्तव पादयोने, और मेरा सिर कहां लगे? शिरः तव निवास जगत प्रणामे, मैं हर व्यक्ति में आपके दर्शन करूं और हर व्यक्ति के सामने अपना सर झुकाऊं, ये जानते हुए कि हर व्यक्ति में आप हैं। और अंतिम प्रार्थना उन्होंने, अंतिम जो उसकी लाइन है वो बहुत सुंदर है, उसमें वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा, हमारा जो सिर है, शिर तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि, और हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए? दृष्टि सताम दर्शने सुभवत तनुना। वो कहते हैं कि हमारी दृष्टि आपके शुद्ध भक्तों की ओर लगी रहे, बस इतनी ही प्रार्थना आपसे करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अब आरती होगी भगवान की, 12:30 बजे हैं, और फिर आरती के बाद आप सब यहीं रहें, कीर्तन करें, कीर्तन होगा। और अभी जो आपने सुना, कभी कभी ऐसा होता है, आपको बताना चाहते हैं कि जब तक अकाल नहीं आता ना, व्यक्ति को पानी के महत्व का पता नहीं चलता है ना। और जब तक विष नहीं खाया जाए तो अमृत का स्वाद नहीं होता, और जब तक आप हमारी कथा नहीं सुनो तब तक कमल लोचन प्रभु के कथा के महत्व समझ में नहीं आता। तीन बजे ठीक कमल लोचन प्रभु कथा करने वाले हैं, इसलिए हमें यहाँ पर उन्होंने सुबह बिठाया। आप लोग सब जान लीजिए कि असली कथा क्या होती है, तो अब वो 3 बजे होगी अमृत की वर्षा, तो आप 3 बजे निश्चित इस कथा का आस्वादन कीजिए। हरे कृष्ण।